एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम एडी इजार्ड के संस्मरण बिलीव मी अ मेमोयर ऑफ लव डेथ एंड जैज चिकन्स पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, मौत, पहचान और हाँ, जैज मुर्गियों के जरिए जीवन को समझने की एक बहुत ही अनोखी दास्तान है।
बिल्कुल, 2017 में आई ये किताब एडी के उस जाने पहचाने मंचीय चेहरे से कहीं ज्यादा परतें खोलती है। ये उस इंसान की कहानी है जो मंच की रोशनी से हटकर है, जिसमें आप कह सकते हैं बचपन का गहरा दुख है, पहचान का संघर्ष है और आत्मखोज की एक अविश्वसनीय यात्रा भी शामिल है।
एडी इजार्ड, हाँ, कई लोग उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर, लेखक, एक्टिविस्ट के तौर पर जानते हैं और आजकल तो राजनीति में भी आ गए हैं। 4 दशक से भी ज्यादा लंबा करियर, अक्सर हाई हील्स और मेकअप में दिखते हैं मंच पर, एक अलग पहचान है उनकी।
और उनकी कॉमेडी का स्टाइल भी मतलब एकदम अलग है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे विचारों का एक लगातार बहता हुआ दरिया। इतिहास, धर्म, पॉप कल्चर, कुछ भी आ जाता है उसमें, और अक्सर बड़े अजीबोगरीब किरदारों के जरिए, जैसे वो जैज चिकन्स वाली बात आपने कही। और समय के साथ वो जेंडर फ्लूइडिटी यानी लैंगिक तरलता के एक अहम प्रतीक बन गए हैं।
अच्छा, यहीं थोड़ा रुकते हैं। जेंडर फ्लूइडिटी, इसका क्या मतलब है? यहाँ थोड़ा समझाएंगे।
अच्छा सवाल है। देखिए, बेसिकली इसका मतलब है कि लिंग पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो एकदम पक्की हो या सिर्फ मर्द या औरत तक ही सीमित हो। ये एक तरह का स्पेक्ट्रम है और कोई इंसान इस पर कहीं भी हो सकता है या समय के साथ बदल भी सकता है। तो ईडी की जो यात्रा रही है वो इस विचार को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन रही है।
तो आज के इस दौर में एडीजार्ड की कहानी इतनी अहम क्यों हो जाती है?
देखिए, एक तो उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे कोई अपनी निजी मुश्किलों को, अपनी तकलीफों को रचनात्मकता और दूसरों से जुड़ने का एक जरिया बना सकता है। ये सिर्फ अपने लिए ईमानदार रहने की बात नहीं है,
हाँ,
बल्कि ये समझने की है कि हमारी वो चीजें जिन्हें हम शायद कमजोरी या अलगपन मानते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।
और खासकर आज जब लैंगिक पहचान, मेंटल हेल्थ और अपनी असलियत के साथ जीने जैसे मुद्दों पर इतनी बात हो रही है, तब किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनना जिसने इन सवालों से दशकों तक संघर्ष किया और फिर भी अपनी राह बनाई, ये काफी मायने रखता है। 6 साल की उम्र में माँ को खोने वाले बच्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी हिम्मत से अपनी पहचान जाहिर करने तक का सफर।
बिल्कुल, ये हमें लचीलापन सिखाता है, रचनात्मकता की ताकत दिखाता है और सबसे बढ़कर समाज की जो बनी बनाई उम्मीदें होती हैं उनसे परे जाकर जीने की हिम्मत देता है। तो ये किताब सिर्फ एडी की कहानी नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी का हिस्सा बन सकती है जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान, अपनी आवाज ढूंढ रहा है।
तो चलिए इस यात्रा को जरा शुरू से देखते हैं। एडी का जन्म 1962 में हुआ यमन के अदन शहर में। वो तब ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। पिता हेरोल्ड ब्रिटिश पेट्रोलियम में थे और माँ डोरोथी नर्स और मिडवाइफ थीं। शुरुआती जिंदगी काफी घूमने फिरने में बीती।
हाँ, लेकिन बचपन पर जो सबसे गहरा असर पड़ा वो उस घटना से पड़ा जब एडी सिर्फ 6 साल के थे। मार्च 1968 में उनकी माँ डोरोथी उनकी कैंसर से मौत हो गई। ये एक ऐसा सदमा था जिसकी गूंज पूरी किताब में सुनाई देती है। इसने जैसे उनके जीवन की पटरी ही बदल दी।
किताब में इसका जिक्र बहुत बहुत दिल को छूने वाला है और उस छोटे बच्चे ने इस दुख से निपटने का एक बड़ा अनोखा तरीका निकाला। वो काल्पनिक दुनिया बनाने लगे, नए नए किरदार गढ़ने लगे। तो क्या यहीं से उनके भविष्य के परफॉर्मर बनने की नींव पड़ गई थी?
लगता तो ऐसा ही है। ये सिर्फ दुख से भागने का तरीका नहीं था, ये शायद प्रदर्शन की ताकत को समझने का पहला अनुभव था। उन्होंने सीखा कि एक्टिंग करना या कहानी कहना वो सिर्फ पलायन नहीं है, बल्कि दूसरों से जुड़ने का एक रास्ता भी हो सकता है। शायद यहीं वो बीच पड़ा कि कैसे दुख को भी बातचीत का, संवाद का माध्यम बनाया जा सकता है।
माँ की मौत के बाद एडी और उनके भाई मार्क को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वो माहौल कैसा रहा होगा उनके लिए, खासकर जब वो पहले से ही अपनी पहचान को लेकर इतने सवालों से घिरे हुए थे?
हाँ, काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा बोर्डिंग स्कूल का वो संस्थागत जीवन, कड़े नियम और खासकर उस जमाने की वो जो सख्त लैंगिक अपेक्षाएं थीं, ये सब उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था जो अंदर से खुद को अलग महसूस कर रहा था। और किताब बताती है कि यहीं उन्होंने छिपकर मेकअप करने या लड़कियों के कपड़े पहनने जैसे प्रयोग करने शुरू किए।
जैसा किताब में लिखा है, ये शायद बगावत कम
और अपनी पहचान को बाहर लाने की जरूरत ज्यादा थी, एक पहचान जो बाहर आना चाह रही थी। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे बचपन के अनुभव बाद के करियर को इतना ज्यादा आकार देते हैं।
बिल्कुल, उनकी पढ़ाई का रास्ता भी सीधा नहीं था, डिस्लेक्सिया था उन्हें, तो पढ़ाई में मुश्किल होती थी। पिता चाहते थे कुछ और बने, शायद इसीलिए शेफील्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने गए, पर दिल तो कहीं और ही था, और वहीं पर कॉमेडी ने उन्हें पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया।
यूनिवर्सिटी के कॉमेडी ग्रुप्स में परफॉर्म करना शुरू किया। वो शुरुआती दौर कैसा था? क्या उनकी वो अनोखी स्टाइल तभी से झलकने लगी थी?
हाँ, शुरुआत में थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन दुनिया को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता थी और लोगों को हंसाने की एक गहरी इच्छा भी, और यहाँ से उनकी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली शैली पनपने लगी। विचारों का एक लगातार बहता हुआ, कभी कभी बेतरतीब सा लगने वाला प्रवाह, जो असल में उनके दिमाग के चलने का तरीका था।
अच्छा, यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद का सफर तो और भी मुश्किल रहा होगा। क्या किताब में उन संघर्षों का जिक्र है?
अरे हाँ, बिल्कुल है। सालों तक छोटे छोटे क्लबों में परफॉर्म करना, कभी कभी तो ऐसे कमरों में जहाँ गिनती के लोग हों, लंदन के सड़कों पर स्ट्रीट परफॉर्मर यानी बस्कर के तौर पे काम करना, एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज के वो कठिन साल जहाँ हर रात आपकी कला का इम्तिहान होता था। वो बताते भी हैं कि उस दौर में ज़्यादातर कॉमेडी थोड़ी आक्रामक राजनीतिक होती थी, और उनके कहानी कहने वाले थोड़े अजीब से अंदाज के लिए जगह बनाना कितना मुश्किल था।
तो फिर वो बड़ा मोड़ कब आया? कैसे वो संघर्ष आखिरकार सफलता में बदला?
मेरे ख्याल से दो अहम बातें हुई। एक तो उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी पहचान के बारे में बताया खुलकर, उस समय ट्रांसवेस्टाइट शब्द इस्तेमाल होता था शायद, और दूसरा जो करियर के लिहाज से शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था, उन्होंने मंच पर पहले से रटा रटाया मटेरियल छोड़कर बस जो उनके दिमाग में आ रहा था उसे बोलना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मंच पर अपने पूरे वजूद को, अपनी पूरी पहचान को अपनाने का फैसला किया। मेकअप, कपड़े, हाई हील्स, सब कुछ।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये कोई मार्केटिंग की सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि अपनी सच्चाई को अपनाना ही उनकी कला की चाबी बन गया।
हाँ बिल्कुल, ये प्रामाणिकता ही थी जिसने दर्शकों को खींचा। उन्होंने महसूस किया कि जिसे समाज या शायद वो खुद भी कमजोरी मानते थे, उनका अलग होना, उनका सोचने का तरीका, जेंडर की बनी बनाई सीमाओं को न मानना, असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शो जैसे लाइव एट द एम्बेसडर्स, अनरिपीटेबल, डेफिनेट आर्टिकल, इन्होंने उन्हें ब्रिटेन में स्टार बना दिया, और फिर 1998 में वो HBO स्पेशल आया ड्रेस टू किल, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई।
लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय शोहरत के साथ नई चुनौतियां भी आई होंगी यकीनन।
हाँ बिल्कुल आई। उनकी लैंगिक प्रस्तुति पर लगातार सवाल उठे, मीडिया की तीखी नजर उन पर रही, वो अनजाने में ही LGBTQ+ अधिकारों के एक प्रतीक और प्रवक्ता जैसे बन गए, शायद इससे पहले कि वो खुद इसके लिए पूरी तरह तैयार भी हों। उन्हें अपनी निजी पहचान को सार्वजनिक बहसों के बीच संभालना पड़ा।
और बाद के सालों में हमने देखा कि AD सिर्फ एक कॉमेडियन या एक्टर नहीं रहे, वो एक्टिविस्ट बने और वो अविश्वसनीय मैराथन रनर भी बने। 2009 में 43 दिनों में 51 मैराथन, फिर 2016 में नेल्सन मंडेला के सम्मान में दक्षिण अफ्रीका में 27 दिनों में 27 मैराथन। ये तो मतलब कमाली है।
हाँ, ये दिखाता है कि उनकी इच्छा सिर्फ मनोरंजन करने से आगे बढ़कर कुछ करने की थी। ये साबित करता है कि पहचान और जिंदगी का मकसद वो कोई ठहरी हुई चीजें नहीं है, वो बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। उनकी विरासत सिर्फ हंसाना नहीं है, बल्कि लोगों को खुद पर यकीन करने, मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों के पीछे भागने और ये समझने के लिए प्रेरित करना है कि अलग होना भी एक जश्न की वजह हो सकती है। और अब राजनीति में उनका आना इसी विकास का अगला कदम लगता है।
अगर हम AD के मूल दर्शन और उनके मूल्यों को समझने की कोशिश करें, तो इस संस्मरण से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? उनके जीवन को कौन सी चीजें ड्राइव करती हैं?
मेरे ख्याल से उनका जो मूल दर्शन है वो काफी मानवतावादी और आशावादी है। इतनी निजी तकलीफें झेलने के बाद भी उनमें ये यकीन दिखता है कि लोग बुनियादी तौर पर अच्छे होते हैं, और जो भिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका जश्न मनाया जाना चाहिए।
हाँ, उनकी कॉमेडी में भी ये बात झलकती है। वो शायद ही कभी कमजोर लोगों या समूहों को निशाना बनाते हैं, बल्कि वो सत्ता के ढांचों पर, इतिहास की विडंबनाओं पर और इंसानी बर्ताव की जो अजीब बातें हैं उनमें हास्य ढूंढते हैं। जैसे वो हेनरिएट के तलाकों का मजाक उड़ाते हैं, या इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं को ऐसे बताते हैं जैसे कोई रोजमर्रा की बातचीत हो।
बिल्कुल, और उनके दर्शन का एक और अहम पहलू मुझे लगता है एक्शन पर जोर देना। सिर्फ सोचना या महसूस करना नहीं बल्कि करना, चाहे वो मंच पर परफॉर्म करना हो, मैराथन दौड़ना हो या आप राजनीति में आना हो। ये शायद माँ की मौत से मिले उस सबक से आता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए जो करना है उसके लिए इंतजार मत करो, कर डालो।
किताब में उनकी एक डेफिनेट मे बी यानी पक्का शायद वाली सोच का भी जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रतिबद्ध अनिश्चितता का दर्शन है। मतलब बड़े लक्ष्य तय करना, उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना, ये हुआ डेफिनेट वाला हिस्सा। लेकिन साथ ही ये मानना कि रास्ता बदल सकता है, योजनाएं बदल सकती हैं और इसके लिए लचीला रहना, ये हुआ मेबी वाला हिस्सा। तो ये दृढ़ संकल्प और जरूरत के हिसाब से ढल जाने का एक मिश्रण है।
लेकिन क्या ये पक्का शायद वाली सोच कभी कभी टालमटोल या दिशाहीन होने का बहाना नहीं बन सकती? मतलब अगर सब कुछ शायद ही है तो फिर पूरी तरह कमिटेड कैसे रहा जाए?
ये एक अच्छा सवाल है। शायद एडी के संदर्भ में ये दिशाहीनता नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली रुकावटों को स्वीकार करने और उनसे निपटने का एक तरीका है। लक्ष्य पक्का है पर वहां तक पहुंचने का जो नक्शा है वो लचीला है। ये परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय शुरुआत करने पर ज्यादा जोर देता है। अब अगर उनकी प्रेरणाओं की बात करें तो सबसे पहली और गहरी प्रेरणा तो वो माँ की मौत से पैदा हुआ अकेलापन और दूसरों से जुड़ने की इच्छा ही लगती है।
और कॉमेडी उनके लिए वो जरिया बन गई जिससे वो हजारों लोगों से एक साथ जुड़ पाते हैं, वो कनेक्शन महसूस कर पाते हैं जो शायद बचपन में खो गया था।
सही कहा। और एक दूसरी ताकतवर प्रेरणा है खुद को साबित करने की इच्छा, ये दिखाने की जो पारंपरिक ढांचों में फिट नहीं होता वो भी असाधारण रूप से कामयाब हो सकता है। उनका वो अथक परिश्रम, अल्ट्रा मैराथन जैसी लगभग अमानवीय लगने वाली चुनौतियां लेना, ये सब शायद इसी जज्बे से आता है।
और तीसरी प्रेरणा जो मुझे भी दिखी वो है उपयोगी होने की इच्छा। सिर्फ मनोरंजन करना ही काफी नहीं है बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देना भी है, चाहे वो चैरिटी के लिए दौड़ना हो, राजनीतिक सक्रियता हो या फिर इस संस्मरण के जरिए अपनी कहानी इतनी ईमानदारी से सबके सामने रखना हो। ये दिखाता है कि सफलता के साथ वो एक जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। एडी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई ऐसे पल आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अगर हमें तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी तो वो कौन से होंगे?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे बुनियादी मोड़ तो बिना किसी शक के 6 साल की उम्र में उनकी माँ डोरोथी इज़ार्ड की मृत्यु ही है।
ये वो घटना है जिसे वो खुद अपने जीवन का इंजन कहते हैं। इसने ना सिर्फ गहरा दुख दिया बल्कि जैसा हमने पहले भी बात की, इसने जिंदगी की नाजुकता का, उसकी क्षणभंगुरता का एक बहुत तीव्र एहसास भी दिया। और शायद इसने उनमें वो असाधारण सहानुभूति भी पैदा की जो उनकी कला में हमें दिखती है।
बिल्कुल, ये अनुभव सिर्फ दर्दनाक नहीं था, ये एक तरह से मुक्तिदायक भी बन गया। अगर जिंदगी इतनी अनिश्चित है, कभी भी खत्म हो सकती है, तो फिर नियमों में बंध कर क्यों जिया जाए? क्यों ना जोखिम लिए जाएं? क्यों ना वो किया जाए जो दिल चाहता है? इस घटना ने उनके हर काम में एक जल्दी, एक अर्जेंसी भर दी। तो ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये उनके व्यक्तित्व और दुनिया को देखने के नजरिए को आकार देने वाली घटना थी।
अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ क्या रहा होगा?
मेरे विचार में दूसरा बड़ा मोड़ था मंच पर अपनी लैंगिक पहचान को पूरी तरह से अपनाने का फैसला, जिसे अक्सर ड्रैग में परफॉर्म करना कहा जाता है। हालांकि एडी खुद एक्शन ट्रांसवेस्टाइट या जेंडर फ्लूइड जैसे शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, ये उनके करियर के शुरुआती दौर में हुआ।
और जैसा हमने पहले भी चर्चा की, किताब ये साफ करती है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये तो अंदर से आई एक जरूरत थी अपनी सच्चाई को मंच पर लेकर आने की। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसने उन्हें कैसे बदला?
इसका असर जबरदस्त था। इसने उन्हें उस समय के ज्यादातर पुरुष कॉमेडियंस की भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर दिया। इसने उन्हें एक अनोखी आवाज दी, लेकिन इससे भी बढ़कर इसने उन्हें मजबूर किया कि वो आलोचना, मजाक, पूर्वाग्रह और अचानक मिली शोहरत को संभालना सीखें। उन्हें अपनी त्वचा मोटी करनी पड़ी, अपने मकसद को और साफ करना पड़ा। इसने सिखाया कि प्रामाणिकता यानी अपनी असलियत, भले ही शुरुआत में जोखिम भरी लगे, आखिरकार आपको आपके सही दर्शकों और सही मौकों तक पहुंचा ही देती है। ये उनकी पहचान को उनकी ताकत बनाने का एक निर्णायक कदम था।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मोड़ मैं उनकी मैराथन चुनौतियों को मानूंगा, खासकर 2009 में 43 दिनों में 51 मैराथन पूरी करना और उसके बाद की भी दौड़ें।
ये सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं था, है ना? इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ चैरिटी के लिए पैसे जुटाना भर नहीं था, ये इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी दृढ़ता और क्षमता के बारे में एक बहुत ताकतवर बयान था। एक व्यक्ति जिसे पारंपरिक तौर पर एथलीट नहीं माना जाता था, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। इन दौड़ों ने उनकी सार्वजनिक छवि को बदल दिया। वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं रहे, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गए।
इसने ये भी साबित किया कि उनकी प्रतिभा और उनका दृढ़ संकल्प सिर्फ मंच तक ही सीमित नहीं है। उनकी वो मैराथन मानसिकता किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना और लगातार लगे रहना, ये जिंदगी की किसी भी चुनौती पर लागू हो सकती है। ये उनके डेफिनेट मेबी वाले दर्शन का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। तो एडी इज़ार्ड का जीवन और ये संस्मरण हमें एक इंसान के तौर पर क्या सिखाता है? आज के समय में हम उनकी कहानी से क्या सबक ले सकते हैं?
सबसे पहली और शायद सबसे अहम सीख तो प्रामाणिकता की ताकत है। दूसरों के उम्मीदों के हिसाब से जीने की कोशिश हमें अंदर से थका देती है, हमें अधूरा महसूस कराती है। इज़ार्ड का जीवन दिखाता है कि जब आप डर के बावजूद खुद को पूरी ईमानदारी से सामने रखते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। ये बहुत आज़ाद करने वाला एहसास है।
और ये प्रामाणिकता सिर्फ अपने लिए नहीं होती, जैसा आपने पहले भी कहा था, ये दूसरों को भी हिम्मत देती है। जब कोई सार्वजनिक जीवन में इतनी हिम्मत से अपनी सच्चाई जीता है, तो ये उन अनगिनत लोगों को हौसला देता है जो शायद अपनी पहचान या अपने सपनों को छिपाने पर मजबूर महसूस करते हैं।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी सीख है कर्म की शक्ति, एक्शन लेने का महत्व। पूरी तरह तैयार महसूस करने का इंतजार करने के बजाय मैदान में उतर जाना। एडी ने कॉमेडी शुरू की, मैराथन दौड़ी, कई भाषाएं सीखी, अक्सर पूरी तैयारी या आत्मविश्वास होने से पहले ही उन्होंने करके सीखा। इससे अप्रत्याशित अवसर खुलते हैं और इंसान का खुद का विकास होता है।
और एक और बहुत मार्मिक सबक है, दर्द को रचनात्मकता में बदलने की क्षमता। व्यक्तिगत त्रासदी जैसे माँ का खोना उनके लिए सार्थक काम, कला और गहरे मानवीय जुड़ाव का आधार बन गई। यह हमें याद दिलाता है कि शायद लक्ष्य दर्द को मिटाना नहीं, बल्कि उसे किसी उपयोगी, किसी सकारात्मक चीज में बदलना हो सकता है।
हाँ, और उनकी कहानी ये उम्मीद भी जगाती है कि बदलाव किसी भी उम्र में मुमकिन है। उनका एक कॉमेडियन से एक्टर, फिर लेखक, मैराथन रनर, एक्टिविस्ट और अब राजनीतिज्ञ के रूप में विकसित होना, ये दिखाता है कि हम लगातार खुद को फिर से खोज सकते हैं, नए मकसद ढूंढ सकते हैं। जिंदगी एक लगातार चलने वाली विकास की प्रक्रिया है।
इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें और तीन अंतिम निष्कर्ष निकालने हो जो सुनने वालों के साथ रह जाएं, तो वो क्या होंगे?
जरूर। इस गहरी बातचीत से हम तीन मुख्य बातें निकाल सकते हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। माँ की मृत्यु का एडी के जीवन पर कितना गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन का, आप कह सकते हैं, इंजन बन गई। इसने उनकी महत्वाकांक्षा, जुड़ाव की तलाश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की इच्छा को जैसे ईंधन दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पीड़ाएं हमें आकार दे सकती हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनी पहचान बनने देने की जरूरत नहीं है। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, मैराथन मानसिकता की शक्ति। यह सिर्फ दौड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस विचार के बारे में है कि बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी व्यवस्थित तरीके से कोशिश करके और दृढ़ रहकर हासिल किया जा सकता है। टैलेंट जरूरी है, पर एडी का जीवन दिखाता है कि लगातार मेहनत करना, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ना और कभी हार ना मानना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सफलता का एक व्यवहारिक, लगभग वैज्ञानिक फॉर्मूला है, थोड़ी प्रेरणा और ढेर सारा पसीना। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। आपकी सबसे बड़ी कथित कमजोरी या आपका अलगपन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर आप उसे अपनाने का चुनाव करें। एडी का अपनी लैंगिक पहचान को खुले तौर पर जीना सिर्फ व्यक्तिगत आज़ादी का काम नहीं था, इसने उन्हें कला और संस्कृति की दुनिया में एक अनोखी और प्रभावशाली हस्ती बनाया। यह हम सभी के लिए एक चुनौती है कि हम अपने मतभेदों को छिपाने के बजाय उनका जश्न मनाएं, क्योंकि वही हमें असल में खास बनाते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।